पृष्ठ संख्या 75, चार जायसी, सन 1464 से 1542 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्य माला का सुमेरु है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन 1379 ईस्वी लिखकर जिस प्रेम काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया था, जायसी ने उसे चरमोत्कर्ष प्रदान किया। मसनवी शैली में लिखित उनका पद्मावत सूफी काव्य परंपरा की प्रौढ़तम अन्यतम कृति है। यह हिंदी की शीर्षस्थ महाकाव्यों में से एक है। पद्मावत की रचना के 34 वर्षों बाद तुलसी ने उसी के दोहा चौपाई के अनुकरण पर रामचरितमानस की रचना की। पद्मावत की रचना का समय जायसी ने सन 947 हिजरी बताया है, यथा सन 947 अहै कथा आरंभ बैन कवि कहै। कबीर की भांति जायसी के भी जन्म तिथि, जन्मस्थान एवं मृत्यु तथा जीवन की अन्य अन्य घटनाओं के विषय में विद्वान मतैक्य नहीं है। पद्मावत के प्रथम स्तुति खंड में उल्लिखित पंक्ति के आधार पर जायसी के जीवन पर जो थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है वह यह है। जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि कीन्ह बखानु। तहाँ दिवस दस पहुने आयों, भा बैराग बहुत सुख पायों। इस आधार पर जायस नगर रायबरेली उत्तर प्रदेश के आसपास विद्वान जायसी का जन्मस्थान मानते हैं। जन्मतिथि के विषय में जायसी ने जो संकेत किया है वह बड़ा ही विवादास्पद है। भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरिख ऊपर कवि बदी। शुक्ल जी ने इसी आधार पर जायसी का जन्म काल 900 हिजरी माना है, तो पंडित चंद्रबली पांडे ने 30 बरिख ऊपर का अर्थ नवी शती में 30 वर्ष बीतना किया है। डॉक्टर राम पूजन तिवारी का विचार है कि कवि ने 900 हिजरी में 30 वर्ष बढ़ाकर कहा है। इस आधार पर जन्म तिथि 870 हिजरी ब्रैकेट में 1464 ईस्वी निश्चित होती है। जायसी की मृत्यु काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी के अनुसार 4 रिजब 949 हिजरी ब्रैकेट में 1542 ईस्वी अनुमानित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का आरंभ 1520 ईस्वी में और समापन 1540 ईस्वी के आसपास हुआ है। इस आधार पर भी जायसी की मृत्यु 1542 ईस्वी मानी जाती है। कहा जाता है कि हिजरी 949 में जायसी की मृत्यु अमेठी में एक शिकारी की पृष्ठ संख्या 76 गोली लगने से हुई थी। अमेठी के राजा ने वहीं पर उनकी समाधि बनवा दी, जो आज भी इस महान कवि की अमरता को उद्भाषित कर रही है। जायसी के गुरु कौन थे, इस विषय में भी विवाद है। कुछ लोग सैयद अशरफ तो कुछ लोग शेख मेहंदी को जायसी का गुरु बताते हैं, पर यह निर्विवाद है कि ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा के शिष्य थे। इस परंपरा की दो शाखाएं थीं, एक मानिकपुर काल्पी वाली और दूसरा जायसी वाली। जायसी ने पद्मावत में दोनों शाखाओं के पीरों का उल्लेख किया है, जिसमें एक हैं सैयद अशरफ और दूसरे हैं शेख मेहंदी। यथा सैयद अशरफ पीर पियारा, जेहि मोहि पंथ दीन उजियारा। गुर मेहंदी खेवक मैं सेवा, चले उताइल जेहि करि खेवा। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट और चित्ररेखा में भी इन दोनों ही पीरों का श्रद्धा से स्मरण किया है, तथा मानिकपुर काल्पी वाली गुर परंपरा का सविस्तृत परिचय भी दिया है। इस आधार पर शेख मेहंदी को जायसी का गुरु स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है। काव्य कृतियाँ जायसी विरचित अनेक कृतियाँ गिनाई जाती हैं, किंतु शोध और साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित कृतियों को जायसी की रचना माना जाता है। ये हैं एक पद्मावत, दो अखरावट, तीन आखिरी कलाम, चार चित्ररेखा, पांच महिरी बायसी, छः मसलानामा और सात कन्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में जहाँ पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम का संपादन किया है, वहीं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके अतिरिक्त महिरी बायसी को भी ग्रंथावली में जगह दी है। डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने चित्ररेखा को भी सम्मिलित किया है तथा जायसी कृत 24 ग्रंथों की एक सूची भी दी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर इस्लाम के सिद्धांत से संबंधित चौपाइयों को निरूपित किया गया है, तो आखिरी कलाम में कयामत के दिनों का वर्णन है। चित्ररेखा का आधार एक छोटी सी प्रेम कथा है जिसमें चंद्रपुर नगर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम सिंह कुंवर की प्रेम कहानी वर्णित है। कन्हावत अवधी भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें कृष्ण के जीवन चरित्र को दोहा और चौपाई शैली में वर्णित किया गया है। पृष्ठ संख्या 77। पद्मावत की रचना जहाँ जायसी ने शेरशाह के समय में की थी, वहीं कन्हावत की रचना बादशाह हुमायूं के शासनकाल की है। इन ग्रंथों में जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। सूफी कवियों ने प्रेम को साधना का मूल आधार मानकर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफर को तय करने की बात कही। मुल्ला दाऊद, कुतबन, मंझन, उस्मान, जायसी, नूर मुहम्मद आदि सभी ने प्रेम का विशुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन की अनेक दशाओं को सामने रखा। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। सभी सूफी कवियों ने ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग कर उसमें लोक जीवन और लोक तत्वों की प्रतिष्ठा कर अपने प्रेम से आप्लावित उदार और सरल हृदय का परिचय दिया। इनके प्रेम काव्यों में रहस्य के साथ आध्यात्मिकता का झीना आवरण बराबर चलता रहता है। पार्थिव प्रेम के सहारे अपार्थिव सत्ता तक पहुँचना यही सूफियों का लक्ष्य है। जायसी और उनका पद्मावत। पद्मावत जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कुल 57 खंड ब्रैकेट में सर्ग हैं और अंत में कथा का उपसंहार है। इस प्रथम खंड स्तुति खंड तथा अंतिम पद्मावती नागमती सती खंड है। कवि ने इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। इसके कथानक में इतिहास, कल्पना एवं लोकानुश्रुत तीनों का मिश्रित प्रयोग किया गया है। फारस की मसनवी शैली में इसकी रचना हुई है। यह मसनवी क्या है? जायसी ग्रंथावली में शुक्ल जी ने लिखा कि इन प्रेम गाथा काव्यों में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित्र। पृष्ठ संख्या 78। काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर ना होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है। मसनवी के लिए साहित्यिक नियम केवल इतना समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही मसनवी छंद में हो, पर परंपरा के अनुसार उसमें कथा आरंभ के पहले ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा शाहे वक्त की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें पद्मावत, इंद्रावत, मृगावती इत्यादि सब में पाई जाती हैं। जायसी ने ग्रंथ का आरंभ ही स्तुति खंड से किया है। सुमिरों आदि एक कर तारु, जेह जीव दीन कीन्ह संसारु, कीन्हे सी प्रथम ज्योति प्रकाशु, कीन्हे सितेह प्रीति कैलासु। इसी खंड में जायसी ने शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा भी की है। शेर शाह देहली सुल्तानु, चारु खंड तपय जस भानु। पद्मावत की संपूर्ण कथा को समीक्षकों ने दो भागों में विभक्त किया है, एक कथा का पूर्वार्ध, दो कथा का उत्तरार्ध। कथा का पूर्वार्ध भाग कल्पित तथा अनुश्रुतियों पर आधारित है, जबकि इसका उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। किंतु डॉक्टर शिव सहाय पाठक जैसे विद्वानों ने इसे कल्पित नहीं माना है। इसके पीछे वह जायसी की निम्न उक्ति को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। आदि अंत जस कथा आहि, लिखी भाषा चौपाई कहाई। प्रारंभ से पद्मावती रत्नसेन विवाह खंड तक की कथा को पूर्वार्ध तथा राघव चेतन देश निकाला से लेकर पद्मावती नागमती सती खंड तक की कथा उत्तरार्ध भाग के अंतर्गत आती है। पूर्वार्ध की कथा में लोक अनुश्रुतियों, कल्पना और किंवदंतियों से कवि ने पर्याप्त सहायता ली है, किंतु उत्तरार्ध की कथा इतिहास से संस्पर्शित है। संपूर्ण प्रेम कथा को जायसी ने बड़े मनोयोग से अत्यंत ही रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। 57 खंडों के इस महाकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है कि सिंघल द्वीप के राजभवन में पद्मावती का प्रिय एक तोता था। पद्मावती को विवाह योग्य देखकर तोते ने उससे देश देशांतर में उसके योग्य वर ढूंढने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर राजा ने क्रुद्ध होकर उसे मार डालने का आदेश दिया, किंतु पद्मावती ने किसी तरह उसे बचा लिया। पद्मावती के स्नान के लिए जाने पर वह तोता वहां से उड़ गया। एक बहेलिए से एक ब्राह्मण ने खरीद कर उसे चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के दरबार में प्रस्तुत किया। वह तोता मनुष्य की भाषा बोलता था। राजा ने उसे उस ब्राह्मण से खरीद लिया। एक दिन राजा के ना रहने पर रूपगर्विता रानी नागमती ने उस सुआ से पूछा कि उसके समान दुनिया में कोई सुंदरी है। इस पर तोते ने सिंघल की अनिंद्य सुंदरी पद्मिनी नारियों के पृष्ठ संख्या 79 रूप के आगे उसके रूप को तुच्छ बताया। इस पर रानी ने क्रुद्ध होकर उसे मारने के लिए दासी को सौंप दिया, किंतु दासी ने उसे राजा की अमानत समझकर छिपा लिया। इस घटना से अवगत राजा ने जब सूए के मुख से पद्मावती का नख शिख सौंदर्य वर्णन सुना तो उसे पाने के लिए साथियों संग जोगी का वेश बनाकर निकल पड़ा। राजा सात समुंदर पार करता हुआ सिंघल द्वीप पहुंचा, किंतु पद्मिनी के रूप को देखकर बेहोश हो गया। पार्वती और महादेव की कृपा से उसने पद्मिनी को प्राप्त किया। दोनों विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगे। इधर नागमती का विरह शुरू हो गया। एक पक्षी से उसका संदेशा पाकर रत्नसेन पद्मावती के साथ चित्तौड़ को चल पड़ा। यहाँ तक कथा का पूर्वार्ध है। कथा का उत्तरार्ध दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित के देश निष्कासन से आरंभ होता है। वह पद्मावती का रूप वर्णन जब दिल्ली पहुंचकर अलाउद्दीन से करता है, तब अलाउद्दीन उसे पाने के लिए चित्तौड़गढ़ में 8 दिनों तक घेरा डाले रहता है और छल से रत्नसेन को कैद कर लेता है। गोरा और बादल दो वीर योद्धाओं के प्रयास से वह छुड़ा लिया जाता है, किंतु युद्ध करते हुए राजा भी अंततः वीर गति को प्राप्त होता है। राजा के शव के साथ पद्मावती और नागमती दोनों रानियां सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन को पद्मावती की केवल भस्म छार या राख ही मिल पाती है। वह पद्मावती की चिता के पास जाकर एक मुट्ठी राख उठाकर हाथ में बिखेर देता है। जैसे लिखते हैं, छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन ही उड़ाए परथिमी झूठी। जिस रूप की चाह लेकर अलाउद्दीन दिल्ली से चित्तौड़ आया था, वह रूप निष्कलुष प्रेम में अपने जीवन को उत्सर्ग कर चुका था। उसके कलमश हाथों में तो केवल उसकी राख ही लग पाई। अंत में निम्न पंक्तियों से जायसी इस कथा का समापन करते हैं। जौहर भई स्त्री पुरुख भये संग्राम, पात साहि गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। इस प्रकार जायसी ने कथा प्रवाह का निर्बाध निर्वहन किया है। कुछ स्थलों को छोड़कर पद्मावत का वर्णन उबाऊ नहीं है। मार्मिक स्थलों को पहचान कर जायसी ने इस महाकाव्य को अपनी लेखनी से अमर बना दिया है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावती नागमती के सती होने की घटना को पद्मावत की ट्रेजेडी कहा है। उन्होंने जायसी नामक अपने ग्रंथ में लिखा कि इन्वर्टेड कामा इसी प्रेम की कसौटी पर उन्होंने ब्रैकेट में जायसी ने अपने युग को कसा और उनकी अनुभूति में वह गहरी विषाद दृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें एक तरफ आदमी पृष्ठ संख्या 80 बैकुंठी भी हो जाता है, दूसरी तरफ एक मुट्ठी खाक भी रह जाती है। पद्मावत की ट्रेजिडी इन दो अवस्थाओं के एक साथ प्रज्वलित हो जाने की ट्रेजिडी है। पद्मावत को कुछ विद्वानों ने अन्योक्ति काव्य, कुछ ने समासोक्ति काव्य, तो कुछ ने रूपक काव्य माना है। इसका कारण इस ग्रंथ में आए उपसंहार वाली कुंजी है, जो रूपक की ओर संकेत करती है। यथा मैं यही अर्थ पंडित तन्ह बूझा, कहा कि हम किछु और न सूझा, 14 भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुवाजेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेउ तो बूझ ही पारहु। उक्त पंक्तियों में 14 भुवन को मनुष्य शरीर के ही भीतर कहा गया है। तन ही चित्तौड़गढ़ है तथा मन ही राजा है, हृदय ही सिंहलदीप तथा बुद्धि ही पद्मावती है, हीरामन तोता ही गुरु है जो रास्ता दिखाता है, नागमती सांसारिक प्रपंच का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान तथा अलाउद्दीन ही माया का प्रतीक है। इस प्रेम कथा को जो समझ सकता है वह समझ ले, किंतु पद्मावती का यह रूपक उसके चरित्रों से पूरी तरह मेल नहीं खाता। नागमती जैसी सती साध्वी को दुनिया धंधा कहना, पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानना आदि असंगत लगता है। इसीलिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे विद्वानों ने पद्मावत के उक्त अंश को ही प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। कुछ विद्वानों ने पद्मावत को अन्योक्ति काव्य कहा है तो कुछ ने समासोक्ति काव्य। अन्योक्ति में प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत का महत्व होता है तो समासोक्ति में प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का। जायसी ने पार्थिव कथा कहते हुए अपार्थिव की ओर बराबर संकेत किया है। इस दृष्टि से इसे समासोक्ति काव्य कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि पद्मावत की प्रस्तुत कथा का भी महत्व है और उसके माध्यम से अप्रस्तुत आध्यात्मिक संकेतों का भी। आचार्य शुक्ल ने इसे समासोक्ति ही माना है, यद्यपि कि इस सब के बावजूद जायसी की ये पंक्तियाँ इसके अर्थ खोलने वालों को आज भी चुनौती दे रही हैं। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेहु जो बूझे पारहु। पृष्ठ संख्या 81। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पद्मावत एक महान प्रबंधात्मक काव्य है। इसमें लगभग सभी रसों का समावेश है। इसका पर्यवसान शांत रस में हुआ है। इसमें आद्यांत दोहा चौपाई की कड़वकबद्ध शैली अपनाई गई है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का विशेष विनियोग है। ऋतुवर्णन, 12 मासा वर्णन तथा तथा पद्मावती का सौंदर्य वर्णन पद्मावत की अद्वितीय वस्तु है। शुक्ल जी ने नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है। इसकी भाषा अन्य सूफी काव्यों की भांति ठेठ अवधी है, जिसमें ग्राम्य शब्दों की अधिकता है। इस प्रकार गंभीर जीवन दर्शन, उदात्त सार्वभौमिक प्रेम संदेश, लोक प्रवृत्तियों का अंतःस्पंदन, लोक भाषा की सरसता, लोक मंगल की भावना, पार्थिव के साथ अपार्थिव प्रेम तत्व की छाया, रहस्य और आध्यात्म का झीना प्रवाह, उच्च मानवता का विमल संदेश, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय आदि सभी मिलकर पद्मावत को एक कालजयी महाकाव्य सिद्ध करते हैं।